आज है 5 जुलाई दिन रविवार। स्वागत है आपका, मैं हूँ सुशीला सिंह। ग्रीस में जनमत संग्रह से पहले इसके पक्ष और विपक्ष में रैलियां, कैसा है माहौल?
जंग जैसे लगने जा रही है, जब आम जो इतनी परेशान है, घुटनज़दा माहौल है, कारखाने बंद हो चुके हैं, पब्लिक सेक्टर तकरीबन मफलूज होकर रह गया है, सरकारी अदारे तो खुले हैं मगर वहाँ पे काम नहीं हो रहा है, कैश बिल्कुल नहीं किसी के पास है।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार ने कहा, दाऊद के समर्पण का प्रस्ताव लाए थे जेठमलानी।
राम जेठमलानी साहब ने इस तरह का प्रपोजल दिया था, ये बात सच है, वेल इस पे कंडीशन डाली, दाऊद इब्राहिम को बम्बई में आने के बाद पुलिस ने अरेस्ट नहीं करना चाहिए, ये कौन स्वीकार कर सकता है? अब ये स्वीकार हम नहीं कर सकते।
होगी समाचार पत्रों की समीक्षा और खेल की भी खबरें, लेकिन पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार, अमल चौधरी से। ग्रीस और यूरोजोन की अर्थव्यवस्था के मद्देनज़र आज अहम जनमत संग्रह होना है। इसके तहत ग्रीस की जनता यह तय करेगी कि उसे कड़े शर्तों के साथ मिलने वाला पश्चिमी देशों का बेलआउट पैकेज स्वीकार्य है या नहीं। अगर ग्रीस की जनता बेलआउट पैकेज को ना करती है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष व पश्चिमी देश अपनी शर्तों पर अड़े रहते हैं, तो संभव है कि ग्रीस यूरोजोन से बाहर हो जाएगा। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलान ने कैमरून की स्वतंत्रता के समय वहां हुए अत्याचारों के लिए खेद जताया है। ओलान ने कैमरून यात्रा के आखिरी दिन यह बात कही। उन्होंने कहा कि फ्रांस अपनी सेना द्वारा यहां 1960 में मिली स्वतंत्रता से पहले और बाद में किए गए अत्याचारों को कभी नहीं भूल सकता। टूनिशिया के राष्ट्रपति बेजी कायद एसएफसी ने देश में आपातकाल लगाने के अपने फैसले को सही ठहराया है। लोगों के नाम संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि इस वक्त देश में युद्ध जैसे हालात हैं और ऐसे में इस तरह के कदम उठाना ही सही है। उन्होंने कहा कि देश को केवल चरमपंथ से ही खतरा नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक समस्याओं ने भी बुरी तरह से देश को जकड़ रखा है। उन्होंने कहा, हम खतरे से नहीं डरते। मैं एक बात साफ साफ बता देना चाहता हूं कि हमें स्थायी खतरों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए हमें कुछ ऐसे ठोस कदम उठाने होंगे जिसकी मदद से हमें कुछ परिणाम मिल सकें। इस समय हमारे देश में युद्ध जैसी स्थिति है और इससे निपटने के लिए हमें वैसे ही कदम उठाने होंगे जैसे हम किसी भी युद्ध में उठाते हैं। टूनिशिया के राष्ट्रपति बेजी कायद एसएफसी, पिछले सप्ताह चरमपंथियों ने एक पर्यटन स्थल पर हमला किया था जिसमें करीब 38 लोग मारे गए थे। इराक की राजधानी बगदाद में एक कार में हुए बम विस्फोट में 11 लोगों के मारे जाने की खबर है। चरमपंथियों ने तब हमला किया जब लोग शाम को अपना रोजा तोड़ रहे थे। इस हमले में बाजार और बस गैराज को निशाना बनाया गया। हालांकि अभी तक किसी भी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन अधिकारियों ने आशंका जताई है कि इस हमले के पीछे इस्लामिक स्टेट का हाथ हो सकता है। नाइजीरिया की सेना का कहना है कि शुक्रवार शाम को चरमपंथी संगठन बोको हराम ने देश के उत्तर पूर्वी हिस्से में आत्मघाती हमला किया। सेना के अनुसार चरमपंथी वाहनों में आए और महिला आत्मघाती हमलावरों ने भीड़ के बीच पहुंचकर खुद को उड़ा लिया। हालांकि अभी तक मरने वालों की संख्या स्पष्ट नहीं हो सकी है। भीड़ में से अधिकतर लोग मैदुगरी की तरफ जा रहे थे जहाँ पहले से ही हजारों विस्थापित लोगों के रहने का इंतजाम किया गया है। चिली ने अर्जेंटीना को दक्षिण अमेरिका के सबसे सम्मानित फुटबॉल चैंपियनशिप कोपा अमेरिका में 4-1 से हरा दिया है। दोनों ही टीमें मैच खत्म होने के बाद कोई भी गोल कर नहीं सकी, जिसके बाद परिणाम पेनल्टी शूटआउट से निकला। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत रेडियो bbchindi.com और अपने मोबाइल पर लाइव सुशीला सिंह के साथ। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं ग्रीस से। आर्थिक संकट से जूझ रहे ग्रीस में बेलआउट पैकेज पर होने वाले जनमत संग्रह को लेकर देश भर में दो मत हैं। देश की सरकार जहां इस बेलआउट को नकारने का समर्थन कर रही है, वहीं विपक्षी दल और यूरोजोन के नेता इसके समर्थन में हैं। ग्रीस के वित्त मंत्री ने तो इसे चरमपंथ के समान तक कह डाला है। पूरे ब्यौरे के साथ अमल चौधरी।
ग्रीस के वित्त मंत्री यानिस वारूफाकिस ने चेताया है कि अगर उन्हें मदद नहीं मिली और देश दिवालिया हो गया तो यूरोजोन के अंतर्गत आने वाले अन्य देशों को 1 खरब यूरो का नुकसान होगा। रविवार को बेलआउट पैकेज पर होने वाले जनमत संग्रह से पहले उन्होंने यह बात कही। स्पेन के अखबार अलमुंडो को दिए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि यूरोपियन यूनियन के नेता ग्रीस के साथ जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं वो चरमपंथ के समान है। हालांकि जर्मनी के एक अन्य अखबार को दिए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि जनमत संग्रह का फैसला जो भी हो, सोमवार तक ग्रीस अपने कर्जदाताओं के साथ समझौते तक पहुंच जाएगा। वहीं ग्रीस के प्रधानमंत्री एलेक्सिस सिप्रास ने राजधानी में 25,000 समर्थकों को संबोधित किया। इस वक्त उन्होंने लोगों से अपील की कि वो अंतर्राष्ट्रीय प्रस्ताव की शर्तों को अस्वीकार कर दें। हालांकि सरकार समर्थक रैली के पास ही आयोजित दूसरी बड़ी विरोध रैली में चेतावनी दी गई कि अगर अंतर्राष्ट्रीय प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया गया तो इसका मतलब होगा कि ग्रीस यूरोजोन से बाहर निकल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ ग्रीस के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के महासचिव निकोसा सोफियानोज ने आशंका जताई कि इस बेलआउट से जुड़ी जटिलताएं कई लोगों को भ्रमित कर सकती हैं। उन्होंने कहा, यह जनमत संग्रह हम लोगों में फूट डाल रहा है जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक है। इसमें सवाल साफ नहीं है, दरअसल कोई सवाल है ही नहीं। अगर कोई इस मत पत्र को पढ़ता है तो उसे समझ ही नहीं आएगा। मैंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मास्टर्स डिग्री ली है, इसके बावजूद मुझे इस मतपत्र की भाषा समझ नहीं आ रही। ऊपर से यह अंग्रेजी में है, तो सोचिए जो गांव की महिला होगी वो इसे कैसे समझ पाएगी। ग्रीस के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के महासचिव निकोसा सोफियानोस। वहीं कुछ ऐसे हैं जिनका मानना है कि अगर जल्द ही समझौते पर हस्ताक्षर नहीं होते हैं तो ग्रीस के पर्यटन उद्योग को काफी नुकसान पहुंचेगा। ग्रीस के नक्सोस नगर पालिका के उपमंत्री डिमित्रिस लियानोस कहते हैं,
इट विल बी अ कैटास्ट्रोफी इफ दे डोंट मेक अ डील एज क्विक एज पॉसिबल।
अगर जल्द ही किसी समझौते पर नहीं पहुंचा गया तो न केवल इस साल के लिए बल्कि अगले साल भी देश के पर्यटन उद्योग को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए सभी को मिलकर कोई रास्ता जल्दी ही निकालना होगा। ग्रीस के नक्सोस नगर पालिका के उपमंत्री डिमित्रिस लियानोस। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महीनों तक बातचीत के बाद रविवार को ग्रीक मतदाता ये फैसला लेंगे कि वे अंतर्राष्ट्रीय कर्जदाताओं की शर्तों का समर्थन करते हैं या नहीं। यूरोपीय संघ के अध्यक्ष जियां क्लॉड यूंकर ने कहा कि नकारने का मत ग्रीस की स्थिति को बहुत कमजोर कर देगा। जबकि इसके समर्थन में वोट पड़ भी जाते हैं तो किसी समझौते तक पहुंचना आसान नहीं होगा।
तो जैसा कि आपने अमल चौधरी को सुना, ग्रीस में जनमत संग्रह से पहले दोनों पक्षों की तरफ से रैलियां हुई हैं। ग्रीस के वित्त मंत्री ने स्पेन के एल मुंडो अखबार से बातचीत में कहा कि देनदाता देश लोगों में डर पैदा करना चाहते हैं। सरकार ने वोटरों को बेलआउट पैकेज की शर्तों के विरुद्ध वोट करने को कहा है, लेकिन सरकार के आलोचकों ने चेतावनी दी है कि ऐसा करने से ग्रीस यूरोजोन से बाहर हो सकता है। विनीत खरे ने राजधानी एथेंस में स्थानीय पत्रकार इरफान तैमूर से पूछा कि वहां जनमत संग्रह से पहले कैसा माहौल है।
समाज तो जंग का ही है, जंग जैसे लगने जा रही है, जैसे कुछ होने जा रहा है। आवाम जो इतनी परेशान है, घुटन ज्यादा माहौल है, बाहर ट्रैफिक नहीं है, कारखाने बंद हो चुके हैं, फैक्ट्रियां बंद हैं, पब्लिक सेक्टर तकरीबन मफलूज होकर रह गया है और उसके साथ साथ सरकारी अदारे तो खुले हैं मगर वहाँ पे काम नहीं हो रहा है, कैश बिल्कुल नहीं किसी के पास है।
आप बताइए कि रोजमर्रा की आपकी जिंदगी पर किस तरह से असर पड़ा है, चाहे वो खाने पीने की चीजें हो या फिर घर में तो पैसे रखने की बात हो, आप कैसे गुजारा कर रहे हैं फिर?
मुझे 25 साल यहाँ पर हो गए हैं, मेरी फैमिली यहाँ पर है, तो इस तरह था कि अभी लिमिटेड हो चुके हैं, अपनी मर्जी से कोई चीज नहीं खरीद पा रहे, सिर्फ जो बहुत ज्यादा जरूरत की चीज है उसको हम खरीद रहे हैं। और खरीदने से मुराद ये है कि ना कोई कपड़े, ना जूते, ना किसी किस्म की, हर चीज को हमने बिल्कुल उनको कट ऑफ कर दिया है। सिर्फ खाने पीने की चीजें वो भी लिमिटेड, तोल तोल के देख देख कर, क्योंकि जो हमारे पास पैसे थे वो तो शुरू में ही खत्म हो गए, बैंक बंद हुए तकरीबन 10 दिन हो चुके हैं और रेफरेंडम के ऐलान से ही जो बैंकों के बाहर रश लग गया था। तो अभी ये है कि हुकूमत ने ऐलान किया है कि आप 60 यूरो पर डे अपने कैश निकलवा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। तो उसमें आप देखें कि 60 यूरो एक फैमिली के लिए तकरीबन कुछ भी नहीं है। इंडिया और पाकिस्तान की बहुत बड़ी कम्युनिटी यहाँ पर है, वो काश्तकारी में वो काम करती है, तो बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि वो अपने ममालक को वापस चले गए क्योंकि यहाँ पर अब रहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है।
ये क्या लोगों में समझ है कि चाहे येस और नो हो उसके क्या इम्पैक्ट होगा ग्रीस पर?
इस चीज पर अभी बहस हो रही है, दोनों तरफ के जो पार्टियां हैं वो इसी अपनी इस पोजीशन को वाजा करने के लिए उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी रैलियां इतमाद निकाले हैं और मीडिया पर भी लोगों को कन्विंस कर रहे हैं इस चीज में। जो मुखालफत में वोट ये है कि हम जो नई शरायत नहीं मानेंगे, जो ऑलरेडी IMF और यूरो जोन के जो कर्जे के तले है यूनान की मईशियत, वो कहते जो हमने पहले शरायत मानी हुई है उसी के तहत हमें मौका और दिया जाए, जिसको जो कर्ज देने वाली जो अथॉरिटीज हैं जिनमें IMF है और यूरो जोन है, वो चाहते हैं कि नहीं जी, आपने अगर नया कर्ज लेना है तो उसके लिए हमारी नई शरायत होंगी, ہوگی. نئی شرائط میں کیا ہے کہ یہاں جو ٹیکس ہے اس کو مقدار بہت بڑھا دی جائے گی. یونان کی جو معیشت کا سب سے بڑا جو دار و مدار انحصار ہے وہ ٹوریزم پہ ہے, تو ٹوریزم پر ابھی تک جو 13% ٹیکس ہے اگر اس کو ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ 25% تک لے جائیں گے, اگر 25% تک لے جائیں گے تو یونان میں کوئی ٹورس جو سیاحت کے مقامات ہیں وہ تو بنجر ہو جائیں گے, وہاں کوئی گھسنے کی کوشش نہیں کرے گا, مہنگائی بہت زیادہ بڑھ جائے گی. اور اسی طرح جو اس کی حمایت میں وہ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ کم از کم ہم یورو زون میں رہتے ہوئے ہم اپنے آپ کو چینج کریں گے, ہم اپنے جو ملک کی جو اصلاحات ہیں اس میں تبدیلیاں لائیں گے, ہم ٹیکس دیں گے, یہ کریں گے وہ کریں گے, تو وہ اس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں. عوام نے اب فیصلہ کرنا ہے کہ وہ انہوں نے اپنے پاؤں پر خود کھڑا ہونا ہے یا انہوں نے نئے مزید جو انہوں نے قرضے لینے کے لیے نئی شرائط مانی ہے, یہ تو ابھی میجورٹی ہے, جو فیصلہ ہوگا اس پر پتہ چلے گا.
آپ نے بتایا کہ آپ 25 سال سے گریس میں رہ رہے ہیں, کتنا بڑا دن ہے ریفرینڈم کا گریس کے بھوشیہ کے لیے آپ کے حساب سے؟
میرے خیال میں کہ ان کی جب آزادی ہوئی تھی, جب یہ ٹرکش گورنمنٹ سے انہوں نے 400 سال ان کے اندر رہنے کے بعد آزادی حاصل کی تھی, اس کے بعد اب اس کو اسی طرح دکھایا جا رہا ہے. غالباً میں کہوں گا کہ میڈیا کی حد تک تو دور کی بات ہے, جو عوام میں جو ایک جوش و خروش پایا جا رہا ہے کہ ہم جو مخالفت میں جو نارتھ میں ووٹ دیں گے وہ یہ سمجھ رہے کہ ہم آزاد ہونے جا رہے ہیں. کافیٹیریز ہیں, شاپس ہیں, سڑکوں پر, گلیوں کی نکر پر, محلوں میں اجتماعات ہو رہے, لوگ کھڑے ہو کر, عورتیں, مرد, بچے, ایون کہ نوجوان یوتھ جو ہے وہ بھی اس میں انوالو ہے.
یہ تھے ایتھنز سے ستھانیہ پترکار عرفان تیمور, جو بتا رہے تھے کہ جنمت سنگرہ کو لے کر کیسا ماحول ہے. جہاں گریس میں جنمت سنگرہ ہوگا وہیں سبھی کو بے صبری سے گریس کے میں اس کے نتیجوں کا انتظار رہے گا. لیکن کیا یہ نتیجے اور سوال کھڑے نہیں کریں گے؟ ونیت کھرے نے لندن میں بات کی آرتھک معاملوں کے جانکار پروفیسر سنیل پوشاک والے سے اور ان سے پوچھا کہ گریس اور اس کی جنتا کے لیے کیا داؤ پر ہے.
یہ تو سب سے پہلے گریس کے لوگوں کو نشچت کرنا ہے کہ انہیں کس پرکار کے دیش میں رہنا ہے. ایک سمسیا یہ ہے کہ زیادہ تر گریک جو لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ایک بہت ہی اداروادی ساماجک جو ایک پرتھا اور ایک پریکٹس وہاں پر جو ہے پالیسیز ہیں ان کی نیتیاں ہیں وہ کنٹینیو رہے. گریس میں 57 ورش میں آدمی ریٹائرمنٹ لے کر پینشن کلیم کرنا شروع کر سکتا ہے, اور ہر گریک جو ہے وہ انٹائٹل ہے پینشن بینیفٹس کے لیے, سرکاری پینشن بینیفٹس ہے تو سرکاری پینشن ان کو ملتی ہے. اگر آپ کسی خطرناک ٹائپ کے پروفیشن ہے, اور اس میں بھی بڑا عجیب سا ایک ان کا انہوں نے بنا رکھا ہے کہ 450 ایسے ڈفرنٹ پروفیشنز ہیں جس کو وہ ہیزارڈس پروفیشن مانتے ہیں, تو اگر آپ ہزارڈس پروفیشن میں کام کرتے ہیں تو آپ ریٹائرمنٹ 50 سال میں لے سکتے ہیں. اور آپ کو آشچری ہوگا یہ سن کے کہ ہیئر ڈریسنگ جو ہے, مطلب یہ بال جو اپنا کیش کرتن والے جو ہم بولتے ہیں بال کاٹنے والے, وہ جو پروفیشن بھی جو ہے اس میں انکلوڈ کیا ہوا ہے 450. مطلب آپ دیکھیے کہ مطلب اتنی زیادہ ادھاروادی جو سرکاری بینیفٹس ہیں یا پینشن اسکیمس ہیں, یا اس کے علاوہ ان کو سوشل ہاؤسنگ, انمپلائمنٹ بینیفٹس, یہ تو سب ملتے ہی ہیں اس کے علاوہ, تو کسی بھی یوروپین کنٹری میں اتنی اداروادی جو بینیفٹس ہیں وہ کہیں نہیں ملتے ہیں گریس کو چھوڑ کے. تو یوروپ کے جو باقی دیش ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ سب آپ کا کب تک چلے گا, یہ تو جب ہم لوگ ہمارے یہاں ساری شکتیوں سے اس کو چینج کر رہے ہیں, لوگوں کی ریٹائرمنٹ ایج بڑھا رہے ہیں, پینشن بینیفٹس کو ہم کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں, اور آپ یو ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو اینی تھنگ, یہ ایک بہت بڑا پرشن ہے. ابھی چوائس یہ ہے کہ اگر نہیں جیت جاتا ہے تو ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے ایک اس کی سمبھاونا یہ ہے کہ یہ گریس یورو چھوڑ دے اور اپنی کرنسی جو ڈراکما ان کی کرنسی ہے پرانی اس پہ چلے جائے, مگر اس پہ بھی گیا اگر ہوتا ہے تو اگر ان کو یہ سارے اتنے اداروادی پینشن بینیفٹس اور بینیفٹس وغیرہ دیتے رہنا ہے تو اس سے تو پھر انفلیشن بہت بڑھ جائے گا اکانومی میں, تو ان کو ویسے بھی تکلیف ہونی ہے. اگر رہتے ہیں یورو میں تو ان کو اس میں بدلاؤ کرنا پڑتا. آئیدر وے گریک کے لوگوں کو کافی چیلنجنگ ٹائمس ہیں ان ٹائم ٹو کم, مطلب آپ سمجھ لیں کہ اگلے 4-5 سال جو ہیں گریس کے لیے اور گریک کے لوگوں کے لیے کافی بھاری ہوں گے.
کئی لوگوں میں کئی کامنٹریز جو میں نے سنی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ شارٹ ٹرم میں بہت زیادہ بھارت پر اثر نہیں پڑے گا, لیکن لانگ ٹرم کی بات کریں تو بھارت کی ارتھ ویوستھا پر اثر پڑ سکتا ہے, آپ کا کیا انالیسس ہے؟
بھارت جیسے دیشوں کے لیے مجھے نہیں لگتا کوئی بہت بھارت پر اس پہ اثر پڑے گا, کیونکہ بھارت تو جو ہے ایک طریقے سے یوروپین سموہ کے دیشوں کے ساتھ ویاپار ضرور کرتا ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, असर पड़ना या ना पड़ना इस पर भी डिपेंड करेगा कि यूरोप पर ये जो ग्रीक का अगर डिफॉल्ट होता है और ग्रीक अगर ये पैसा वापस नहीं दे पाते हैं और तो उससे उनकी इकोनॉमी पे जो फर्क पड़ेगा उससे थोड़ा बहुत असर जरूर पड़ सकता है, थोड़ा बहुत स्लो डाउन जरूर हो सकता है, मगर हो सकता है ये जो एक लॉन्ग टर्म में इसका शायद फायदा ही हो।
ग्रीस में बेलआउट पैकेज पर आज होगा जनमत संग्रह। ये थे प्रोफेसर सुनील पोशाक वाले। आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत और अब रुक करते हैं भारत का। राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष और महाराष्ट्र में पूर्व मुख्यमंत्री शरद पवार ने माना कि उनके मुख्यमंत्री पद के कार्यकाल में वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी के जरिए अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील ने आत्मसमर्पण का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन दाऊद की शर्तें मानी नहीं जा सकती थी, इसीलिए वो प्रस्ताव ठुकरा दिया गया। मुंबई से अश्विन अघोर।
अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील के आत्मसमर्पण को लेकर वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी के बयान से शुरू हुए विवाद ने शनिवार को एक नया मोड़ लिया। जेठमलानी ने अपने बयान में कुछ दिन पहले कहा था कि दाऊद और छोटा शकील 1993 मुंबई बम धमाकों के बाद आत्मसमर्पण करना चाहते थे, लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार उनके आत्मसमर्पण के खिलाफ थे। इस बयान के बाद महाराष्ट्र तथा देश की राजनीति में खलबली मची थी। इस बयान के बाद देश के राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं भी शुरू हो गई थी। इस विवाद को उस वक्त एक नया मोड़ मिला जब शरद पवार ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि दाऊद इब्राहिम ने आत्मसमर्पण की जो शर्तें रखी थी वह किसी भी कीमत पर मानी नहीं जा सकती थी। पवार ने शनिवार को मुंबई में कहा,
राम जेठमलानी साहब ने इस तरह का प्रपोजल दिया था, बात सच है, वह इस पर कंडीशन डाली थी, दाऊद इब्राहिम को बम्बई में आने के बाद पुलिस ने अरेस्ट नहीं करना चाहिए, उसको घर में रहने का इजाज़त देनी चाहिए। भाई जिसके खिलाफ इतने केसेस है, ऐसे आदमी को अरेस्ट नहीं करना ये कौन स्वीकार कर सकता है? और ये स्वीकार हम नहीं कर सकते, जो यहाँ का कानून है इस कानून के सामने उनको जाना पड़ेगा, सबको जाना पड़ता है तो उनको भी जाना पड़ेगा। ये बात हमने कही, इसका स्वीकार नहीं किया।
इस बयान से पवार ने गेंद जेठमलानी के पाले में डाल दी है।
ये थी अश्विन अघोर की रिपोर्ट। समाचार चैनल आज तक के विशेष संवाददाता अक्षय सिंह की मध्य प्रदेश में मौत हो गई है। वे आज तक की विशेष जांच टीम में 2013 से जुड़े थे। इंडिया टुडे ग्रुप ने एक बयान जारी कर कहा है कि अक्षय पिछले 4 दिनों से व्यापम घोटाले की जांच के सिलसिले में मध्य प्रदेश में थे। अक्षय की मौत झाबुआ में हुई है। बयान में कहा गया है कि मौत के कारणों का अभी पता नहीं चला है। इंडिया ग्रुप के बयान में कहा गया है कि हमें उम्मीद है कि डॉक्टर और कानूनी जाँच एजेंसियाँ अक्षय की मौत के कारण का पता लगा पाएंगे। इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के लिए विनीत खरे ने झाबुआ के पुलिस अधीक्षक आबिद खान से बात की।
ये आए थे आप कुछ अपना स्टोरी वगैरह कवर करने के लिए, फिर उसके वहीं पे उनकी तबीयत कुछ खराब हो गई और वो टेकन टू द हॉस्पिटल जहां पे उनकी डेथ हो गई।
बड़ा सडन सा मामला है और इसको लोग कई इसके कई मतलब निकाल रहे हैं। कैसे तबीयत खराब हुई इसके बारे में कोई जानकारी है?
नहीं, आप देखिए बैठे बैठे वहाँ पे बात करते करते उनकी तबीयत वहीं पे उनको चक्कर आने लगा और इस तरह की कुछ उनको डिजीनेस होने लगी और फिर वहीं से वो कुर्सी से बैठे बैठे गिर गए। तो इट माइट बी अ केस ऑफ हार्ट अटैक एज इट अपीयर्स टू अस, बट देन द एक्चुअल कॉज विल बी गिवन बाय द डॉक्टर्स आफ्टर द पीएम।
जी अक्षय जो है ये आए थे, ये जो व्यापम का पूरा मामला है उसमें कुछ इंटरव्यूज करने, उस पर स्टोरीज करने आए थे और उसके बाद आप बता रहे हैं कि ऐसी घटना हुई। अभी जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें आप क्या कर रहे हैं, मतलब इसको कैसे इसकी जाँच कर रहे हैं?
सबसे पहले तो पीएम होगा जिसमें कॉज ऑफ डेथ क्या है वो पता चल पाएगी जब जैसे भी रिपोर्ट वो देते हैं, मे बी दे रिकमेंड सम दूसरा रिपोर्ट और व्हाटएवर अदर रिपोर्ट। वो जांच अभी होगी तो फिर वो उसके बाद वो ओपिनियन दे पाएंगे। इस बीच में जो और चीजें हैं लाइक द स्टेटमेंट्स ऑफ द पीपल हु वर विद देम इंसिडेंट के टाइम में, जो उनके साथ जो लोग थे दिल्ली से, इंदौर से, झाबुआ से, और जिनका वो इंटरव्यू कर रहे थे उनसे भी उनके स्टेटमेंट लिए जाएंगे। जो प्रोसीजर है सेट प्रोसीजर है उसका इंक्वायरी का।
जी तो क्या इसमें इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी उसको भी लेकर जांच कर रहे हैं, वो भी क्या आपकी जांच के दायरे में रहेगा?
जांच में सभी चीजें की जाती हैं, द कॉज ऑफ डेथ एंड द हाउ द मैनर ऑफ डेथ इज इंक्वायर्ड, बट अभी कोई प्राइमा फेसी इस तरह की कोई बात नहीं है। अननेसेसरी पीपल आर ट्राइंग टू यू नो पुट इट।
ये थे झाबुआ के पुलिस अधीक्षक आबिद खान। झारखंड में एक युवती ने कथित तौर पर शौचालय न होने के कारण आत्महत्या कर ली है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं रांची से नीरज सिन्हा।
झारखंड के दुमका में पुलिस ने एक 17 साल की युवती की आत्महत्या का मामला दर्ज किया है। पुलिस अधीक्षक विपुल शुक्ला ने बताया है कि युवती की अस्वाभाविक मौत का मामला उनकी मां के लिखित बयान के आधार पर दर्ज किया गया है। बयान में मां ने कहा है कि युवती घर में शौचालय नहीं होने की वजह से भावनात्मक तौर पर दुखी थी। युवती ने कई दफा शौचालय बनाने पर जोर दिया था, लेकिन उनके घर वालों का कहना था कि पहले शादी के लिए एक एक पाई तो जोड़ लें, लेकिन उसे खुले में शौच जाना नागवार गुजरता था। शुक्रवार के दिन घर पर कोई नहीं था जब उसने आत्महत्या कर ली। युवती BA पार्ट 1 की छात्रा थी। शव का पोस्टमार्टम कराकर घर वालों को सौंप दिया गया है। दुमका नगर परिषद की अध्यक्ष अमिता रक्षित का कहना है कि स्वच्छता को लेकर देश भर में अभियान चल रहा है, लेकिन यह घटना बेशक झकझोरने वाली है। वे इस मामले में प्रशासन से बात करेंगी। नीरज सिन्हा, रांची।
और अब बात विंबलडन की। मिश्रित युगल में भारत की सानिया मिर्जा और उनके जोड़ीदार ब्राजील के ब्रूनो सुआरेस ने तीसरे दौर का मैच जीत लिया है। पूरा ब्यौरा लंदन से अपूर्व कृष्ण।
विंबलडन 2015, दिन भर के खेल का लेखा जोखा।
विंबलडन पर BBC हिंदी सेवा की इस विशेष प्रस्तुति में आपके साथ लंदन से मैं हूं अपूर्व कृष्ण। विंबलडन का पहला हफ्ता समाप्त हो गया है। कल चैंपियनशिप के छठे दिन एक बड़ा उलटफेर हुआ महिलाओं के वर्ग में। पिछली बार की विंबलडन चैंपियन पेत्रा क्वितोवा तीसरे राउंड में बाहर हो गईं। क्वितोवा को सर्बिया की 28वीं सीड की खिलाड़ी येलेना यांकोविच ने एक जोरदार मुकाबले में 3-6, 7-5, 6-4 से हरा दिया। यांकोविच इस जीत से खुश भी हुई और चकित भी। मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या कहूँ। पिछले कुछ सालों में मैं बहुत खराब खेली हूँ और सेंटर कोर्ट पर जाना, पिछली चैंपियन के खिलाफ खेलना और इतने अच्छे दर्शकों के बीच, मैं बहुत बहुत खुश हूँ कि मैं ये मैच जीत सकी। येलेना यांकोविच के शब्द। महिलाओं में 5वीं सीट की डेनमार्क की खिलाड़ी कैरोलाइन वोजनिया की चौथे दौर में पहुंच गई हैं। उन्होंने इटली की कैमिला जॉर्जी को सीधे सेटों में 6-2, 6-2 से हराया। पुरुषों में 7 बार के विंबलडन चैंपियन और पिछली बार के उपविजेता स्विस खिलाड़ी रोजर फेडरर चौथे दौर में पहुंच गए हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के सैम ग्रॉथ को 6-4, 6-4, 7-6, 6-2 से हराया। विंबलडन में तीसरी सीट के खिलाड़ी ब्रिटेन के एंडी मरे भी चौथे दौर में पहुंच गए हैं। उन्होंने इटली के आंद्रिया सेप्पी को 6-2, 6-2, 1-6, 6-1 से हराया। पिछले साल के US ओपन विजेता क्रोएशिया के मारिन चिलिच भी चौथे दौर में पहुंच गए हैं। छठी सीट के खिलाड़ी चेक रिपब्लिक के टॉमस बेल्डिक भी अगले दौर में पहुंच गए हैं। 2010 के विंबलडन उपविजेता बेल्डिक स्पेन के पाब्लो एंथुका से पहला सेट हार गए थे, मगर इसके बाद उन्होंने लगातार तीनों सेट जीतकर मैच अपने नाम कर लिया। मगर 13वीं सीट के खिलाड़ी फ्रांस के जो विल्फ्रेड सोंगा तीसरे दौर में बाहर हो गए। उन्हें क्रोएशिया के इवो कार्लोविच ने 7-6, 4-6, 7-6, 7-6 से हराया। दो बार के विंबलडन चैंपियन स्पेन के राफेल नडाल को दूसरे दौर में ही बाहर कर देने वाले जर्मनी के खिलाड़ी डस्टिन ब्राउन भी कल बाहर हो गए। सर्बिया के विक्टर त्रोएत्स्की ने 4 सेटों में चला मैच 6-4, 7-6, 4-6 और 6-3 से जीत ब्राउन के चौथे दौर में पहुंचने के प्रयास का अंत कर दिया। भारत के लिए छठा दिन अच्छा रहा। लिएंडर पेस के 2 मैच थे, डबल्स और मिक्स्ड डबल्स, और वे अपने दोनों मुकाबले जीत गए। सानिया मिक्स्ड डबल के भी तीसरे दौर में पहुंच गई हैं। सानिया सुआरेस की जोड़ी ने कल जर्मनी और स्लोवाकिया के खिलाड़ियों को 6-2, 6-4 से हराकर तीसरे राउंड में प्रवेश किया। मगर मिक्स्ड डबल्स में रोहन बोपन्ना और उनकी जोड़ीदार स्पेन की मारिया होसे मार्टिनेज सांचेज दूसरे राउंड में बाहर हो गए। आज विंबलडन में विश्राम का दिन है। कल से चौथे राउंड में पहुंचे अंतिम 16 खिलाड़ियों के बीच मुकाबले शुरू होंगे। अपूर्व कृष्ण, BBC विंबलडन।
और अब बाकी के खेल समाचार सुन लेते हैं आदेश कुमार गुप्त से।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। बेल्जियम में खेले जा रहे विश्व हॉकी लीग सेमीफाइनल्स में कल महिला वर्ग का फाइनल नीदरलैंड्स ने अपने नाम किया। फाइनल में नीदरलैंड्स ने कोरिया को 2-1 से मात दी। नीदरलैंड्स के लिए वान मासक करकाला और हॉग इलेन ने गोल किए। जबकि कोरिया के लिए किम बोमी ने गोल किया। जबकि भारतीय महिला हॉकी टीम ने कल कड़े संघर्ष के बाद जापान को 1-0 से बात दी। भारतीय महिला हॉकी टीम ने 5वां स्थान हासिल किया। भारत के लिए इकलौता और विजय गोल खेल के 13वें मिनट में रानी रामपाल ने किया। वैसे भारत की जीत की असली नायिका गोलकीपर सविता रही, जिन्होंने 5 पेनल्टी कॉर्नर बचाए। इस जीत के साथ ही भारतीय महिला हॉकी टीम के अगले साल होने वाले रियो ओलंपिक में खेलने की कुछ संभावनाएं तो बनी हैं, लेकिन स्थिति पूरी तरह साफ होने में अभी थोड़ा समय लगेगा। ऑस्ट्रेलियाई महिला हॉकी टीम ने न्यूजीलैंड को 4-2 से हरा कर 3रा स्थान हासिल किया। पुरुष वर्ग में आज भारत का सामना ग्रेट ब्रिटेन से होगा। भारत 3रे से 4थे स्थान के लिए खेलेगा, जबकि फाइनल में ऑस्ट्रेलिया और बेल्जियम आमने सामने होंगे। उधर पल्लेकल में श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच 3रा और आखिरी टेस्ट मैच खेला जा रहा है, जहां कल मैच के दूसरे दिन स्टंप के समय पाकिस्तान का स्कोर 9 विकेट खोकर 209 रन था, जबकि इससे पहले श्रीलंका की पहली पारी 278 रन पर समाप्त हुई थी। श्रीलंका के सलामी बल्लेबाज दिमुथ करुणारत्ने ने 130 और उपुल थरंगा ने 46 रन बनाए। पाकिस्तान के लेग ब्रेक गेंदबाज यासिर शाह ने 78 रन देकर 5 और तेज गेंदबाज राहत अली ने 74 रन देकर 3 विकेट लिए। पाकिस्तान की पहली पारी को श्रीलंका के तेज गेंदबाज धमिका प्रसाद और नुआन प्रदीप ने कड़े झटके दिए। धमिका प्रसाद ने 78 रन देकर 3 और नुआन प्रदीप ने तो केवल 26 रन देकर 3 विकेट लिए। पाकिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज सरफराज अहमद अभी भी 72 रन बनाकर खेल रहे हैं। पहली पारी के आधार पर पाकिस्तान अभी भी 69 रन पीछे है और उसका 1 विकेट बाकी है।
तो खेल समाचार सुना रहे थे आदेश कुमार गुप्त और हमारे सहयोगी अमल जो है अखबारों को लेकर स्टूडियो पहुंच चुके हैं। अखबार क्या कहते हैं आज अमल?
सुशीला, आज के अखबारों की मुख्य खबरों की बात करूं तो लगभग सभी अखबारों ने यूपीएससी की जो परीक्षा थी उसको अपनी मुख्य खबर बनाया है, जिसमें टॉप 5 में 4 महिलाओं की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया का शीर्षक है एक नए सवेरे की शुरुआत, यूपीएससी में 4 टॉप महिलाएं। हिंदुस्तान टाइम्स लिखता है आईएएस का परिणाम महिला दिवस के समान हो गया। पायनियर ने लिखा है कि महिलाओं ने देश में सबसे कठिन परीक्षा में बाजी मारी। हालांकि इंडियन एक्सप्रेस ने ललित मोदी से जुड़ी एक खबर को अपनी मुख्य खबर बनाया है। एक्सप्रेस लिखता है राष्ट्रपति भवन ने दिल्ली पुलिस में ललित मोदी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। वहीं द हिंदू ने भूमि अधिग्रहण बिल को मुख्य खबर बनाया है। शीर्षक दिया है कि सरकार भूमि अधिग्रहण बिल पर सहमति की राह ढूंढती हुई। वहीं दूसरी तरफ अगर हिंदी अखबारों का रुख करें तो यहां भी यूपीएससी की खबरें ही छाई हुई हैं। अमर उजाला ने लिखा है आईएएस में पहली बार टॉप 4 में सभी बेटियां। दैनिक भास्कर लिखता है शीर्ष पर शक्ति, टॉप 4 में बेटियां। वहीं एनबीटी ने हेडलाइन दी है जज्बे से जीता जहां। हालांकि दैनिक जागरण ने भी इसी खबर को प्रमुखता से लिया है, लेकिन उनकी मुख्य खबर ललित मोदी के कथित खुलासे पर है। खबर का शीर्षक है कि अब घेरे में आए राहुल गांधी। इसमें ललित मोदी ने दावा किया है कि राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा ने उनका आतिथ्य स्वीकार किया था। अन्य खबरों की बात करें तो मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाले की रिपोर्टिंग कर रहे एक पत्रकार की मौत को तकरीबन सभी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इसमें अभी उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। साथ ही दाऊद इब्राहिम की खबर भी पहले पन्नों की सुर्खियां हैं। अगर दूसरी और खबरों की बात करें तो दैनिक भास्कर लिखता है कि चीन में अब ग्रेजुएट्स की ऑनलाइन बोली लगेगी, और चीन की कुनमिंग यूनिवर्सिटी ने मेधावी छात्रों को नौकरी दिलाने के लिए एक नया तरीका शुरू किया है।
जी, समाचार पत्रों की इस विस्तृत समीक्षा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अमल आपका। और अब सुन लेते हैं कार्यक्रम के अंत में मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार। ग्रीस और यूरोजोन की अर्थव्यवस्था के मद्देनजर आज अहम जनमत संग्रह होने वाला है। इसके तहत ग्रीस की जनता यह तय करेगी कि उसे कड़े शर्तों के साथ मिलने वाला पश्चिमी देशों का बेलआउट पैकेज स्वीकार्य है या नहीं। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने कैमरून की स्वतंत्रता के समय वहां हुए अत्याचारों के लिए खेद जताया है। ओलांद ने कैमरून यात्रा के आखिरी दिन यह बात कही। टूनिशिया के राष्ट्रपति बेजी कायद एसएफसी ने देश में आपातकाल लगाने के अपने फैसले को सही ठहराया है। लोगों के नाम संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि इस वक्त देश में युद्ध जैसे हालात हैं और ऐसे में यह कदम एकदम सही है। इराक की राजधानी बगदाद में एक कार में हुए बम विस्फोट में 11 लोगों के मारे जाने की खबर है। चरमपंथियों ने तब हमला किया जब लोग शाम को अपना रोजा तोड़ रहे थे। इस हमले में बाजार और बस गैराज को निशाना बनाया गया। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचार सुना रहे थे अमल चौधरी। इसी के साथ नमस्कार भारत के इस अंक में बस इतना ही। आपसे ताज़ा समाचारों के साथ विश्व भारती में फिर होगी मुलाकात। तब तक हेमंत कुशवाहा के साथ मुझे दीजिए इजाज़त।